ಓಂ ಅಗ್ನಿಯಾನತಿಮಿರಾಂತಸ್ಯಜ್ಞಾನಾಂಜನಂ ಶ್ಲಾಘಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಂ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾಮಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾರ್ಥಿಕ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಗದಾಧರ ಶಿವಾಸವಿ ಗೌರವಂತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ तो अभी तक हमने जो चर्चा किया उसमें अर्जुन ने पहले तो दुर्योधन ने सब कहा अपने अपनी कुछ 7 से 8 अलग अलग प्रकार के डिप्लोमेसी यूज की, छोटा छोटा जो भी है, जैसे अब पर्याप्तम शब्द है, फिर भगवान भीष्मश्च कर्णश्च, ऐसे अलग अलग उसने यो किया. अब भीष्म ने ऐसा शंख बजा करके उसका आंसर दिया कि भाई तू कितना भी ऊपर नीचे हो जा, परिणाम तो एक ही आने वाला है, विष्णु जहां पर है वहीं पर विजय होगी. लेकिन बाद में सब ने अपने अपने शंख बजाए और कृष्ण और अर्जुन और इत्यादि के जो शंख क्या ध्वनि हुए, तो उसमें पांडव को नहीं हुआ कुछ, लेकिन कौरव के हृदय जो है वो फट गए और उनको बहुत ही भय का अनुभव हुआ. अब तो बस यही था कि कपिध्वज वाला जो रथ है, हनुमान जिसके ऊपर विराजमान थे, वो रथ में से बाणों की वर्षा होने शुरू होने, बस यही बाकी था. अब सामने हमने सामने युद्ध होने ही वाला था, लेकिन ये कोई मॉडर्न टाइप युद्ध नहीं है ना. आज के समय में जो युद्ध होते हैं उसको युद्ध कैसे कह सकते हो, उसमें तो केवल ना कोई रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना कुछ नहीं, जिसको मन में झोर आया वो कर देते हैं, कहीं पर बम फेंक देते हैं, कहीं पर किसी को उड़ा देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन पहले के समय में जब युद्ध होता था, जैसे ये युद्ध हो रहा है, तो यहाँ पर आमने सामने दो सेनाएं हैं, लेकिन बिना आदेश के कोई युद्ध शुरू नहीं होता था. वो खड़े रहेंगे जब तक उनके जो अथॉरिटी उनको आदेश नहीं देंगे, तब तक वो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे. सामने सामने थे. भीष्मा सबसे वरिष्ठ थे दोनों सेनाओं में, तो उनका आदर सबसे अधिक था. वो जो कहते थे, एक्चुअली माना जाता है कि सारे युद्ध के नियम भीष्मा ने बनाए थे और उनके बनाए हुए नियम कृष्ण ने भी स्वीकार कर लिए थे और सब ने स्वीकार कर लिए थे, क्योंकि वो बहुत ही अनुभवी और बहुत ही तटस्थ योद्धा थे, समझदार से. तो अभी युद्ध होने ही वाला था, लेकिन अर्जुन ने बीच में भगवान को कहा ऐसा कि मैं देखना चाहता हूं कि कौन युद्ध करने के लिए आए हैं मेरे सामने, मैं देखना चाहता हूं. तो एक समय तो कृष्ण भी सोचने लगे कि देखना क्या होता है, ऐसा क्या होता है देखने का, मैं अभी मैं किसी शत्रु को मारना है तो आपके यहाँ पर जो आर्मी है जो आतंकवादियों का वध करते हैं, तो क्या आतंकवादियों को पहले 2 मिनट खड़ा रहे, मैं तो ये देखना चाहता हूँ. तो देखता है क्या ऐसा होता है कभी, मैं तो देखना चाहता हूँ दिखने में कैसा है, टेढ़ा है मेढ़ा, ऊंचा है नीचा है, वह तो कोई प्रश्न ही नहीं है. शत्रु को देखना क्या होता है, उसको देखना थोड़ी, मारने के लिए जिसको मारना है उसको देखने का क्या फायदा. तो भगवान को भी आश्चर्य हुआ, भगवान सोच रहे ये इसमें ठीक है, मैं तो भाई सारथी हूँ, जो कहोगे वो करेंगे. तो पिछली बार हमने बताया था आपको कि कृष्ण जो है वो अर्जुन के सारथी बनने का स्वीकार किया था, और सारथी का अर्थ होता है कि जो रथी होता है वो लात मारता है सारथी को, और पांव से इशारा, इतना ऐसा नहीं प्यार से, हे मेरे प्रभु अब मेरे रथ को राइट साइड में ले जाओ, ऐसा नहीं होता था। युद्ध के बीच में बात करने का टाइम नहीं होता है उसमें, तो अगर रथ को राइट में लेना है तो अर्जुन लात मारेंगे भगवान को ऐसे। हालांकि भगवान कृष्ण इतने एक्सपर्ट थे कि अर्जुन बताए उससे पहले ही रथ पहुंच जाता था, तो सबके हृदय में है। और अर्जुन बताए उसके ऑपोजिट में भी कई बार कृष्ण ले जाते थे, क्योंकि कृष्ण को पता था कि यहाँ से तुम्हारा फायदा नहीं, उधर जाओगे तो फायदा है। तो कृष्ण इस तरह से करते, लेकिन सारथी का काम है स्वामी की सेवा का और स्वामी के आदेश का पालन करना, यह है सारथी का काम। और भगवान अपने भक्त के सारथी बने, तो ये भगवान का एक ऐसा गुण है जिसको अच्युत शब्द से यहाँ पर भगवान अर्जुन ने भगवान को उपदेश किया है। अच्युत शब्द का अर्थ होता है कि जो अपने भक्त के प्रति अपने व्यवहार में अपने प्रेम में कभी भी चुकते नहीं, कभी भी वो भक्त वात्सल्य में कभी ढीले नहीं पड़ते, कभी कमजोर नहीं होते। अच्युत शब्द इनफॉलिबल। दूसरा हमने इनफॉलिबल का अर्थ बताया था कि जो माया से पराभूत नहीं होते। कई मायावादी लोग कहते हैं, जैसे भी पिछले बार यशोमती नंदन प्रभु लेक्चर दे रहे थे संडे को, दो दिन पहले, दो दिन संडे को, लास्ट संडे को यशोमती नंदन ने बताया, उनको कोई एक आदमी मिला था उनको, तो आदमी बता रहा था वो कृष्ण के अंदर जो है वो भगवान है, कृष्ण थोड़ी भगवान है। ये कॉमन फिलोसॉफी है मायावादियों की। कृष्ण अगर हमारी तरह माया में गिर जाते हैं तो फिर वो भगवान का है के? वो उसमें और हमें क्या फर्क है? तो भगवत गीता बेकार हो गया। अर्जुन और भगवान दोनों एक ही लेवल पे है तो हम पागल है, हम लोग पढ़ रहे हैं नहीं। भगवान अच्युत है और हम च्युत है। हमारा हम माया से आकर्षित हो सकते हैं, हमारा पतन हो सकता है, भगवान का पतन कभी नहीं हो सकता। भगवान कभी गलती नहीं करते। सो बाद में अभी 23वें श्लोक में और 24वें श्लोक, 23वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं क्या देखना चाहते, देखो सुनो क्या कहते हैं। 23वें श्लोक पढ़िए।
दुष्ट बुद्धि वाला दुर्योधन, दुर्योधन नो युद्ध में भगव करवानी इच्छा वाला जे लड़वाई जाओ, अहीं एकटा थयेला छे, तेमने हूँ धारी ने जोड़ लो।
तो बोला हाँ, ये ओल्ड वर्जन है, वो न्यू वर्जन है, दैट्स ओके। या तो क्या कहा गया है, मैं देखना चाहता हूँ कौन है ये धृतराष्ट्र के जो दुर्बुद्धि पुत्र है, वो सबको मैं देखना चाहता हूँ जो मेरे सामने है, युद्ध करने क्या है। कम हियर टू फाइट, विशिंग टू प्लीज द आई विल माइंडेड, युद्ध का मान, और मैं देखना चाहता हूँ उन लोग को युद्ध की इच्छा से आए। लेकिन बाद में संजय ने कहा, पढ़िए संजय वाला।
ये भरत संजय बोली है, ये भरत वंशी अर्जुन द्वारा आ प्रमाणे संबोधित थयेला भगवान कृष्ण बन्ने पक्षों सैन्यना मध्य भाग में के उत्तम रथ ने उभो राख्यो।
ये बहुत स्पेशल रथ है जो भगवान, अब भगवान खुद चलेंगे वो रथ तो अलग ही होगा। पिछले लेक्चर में बताया था ये रथ गिफ्ट में मिला था अर्जुन को देवताओं से, है ना, ये गिफ्ट में मिला था और ये स्पेशल रथ था। और जो घोड़े थे वो सबसे ज्यादा शाइनी थे, अर्जुन के जो घोड़े थे ऐसा स्पेशल उनका चैरियट था कि दूर से पता पड़ेगा अर्जुन का रथ आ रहा है, दूर से चमक रहा था, मीन्स अलग से ही उनका अलग ही, ऐसा वो मिक्स नहीं हो सकता था दूसरे किसी रथ में, अलग दिखता था वो रथ, भगवान चला रहे उसको। और वो रथ जब भगवान अर्जुन ने जब आदेश दिया तो दो सेना का मध्य, सच बिग, आप सोचिए कितना बड़ा विस्तार होगा, करोड़ों लोग जहां इकट्ठे हुए, करोड़ों लोग इकट्ठे हुए, कहा जाता है 64 करोड़ लोग थे दोनों सेनाओं का मिलकर के, ऐसे करोड़ों लोग इकट्ठे हुए हैं जिस मैदान में, कितना बड़ा मैदान होगा कुरुक्षेत्र का। ऐसा माना जाता है कि युद्ध के मध्य से, युद्ध का दूसरा छोर, सेना का दूसरा छोर 60 किलोमीटर दूर था, 60 किलोमीटर। और 60 किलोमीटर भगवान ने रथ चलाया था जयद्रथ को मारने के लिए। अर्जुन जयद्रथ को मारने का प्रतिज्ञा किया था ना, तो वो जयद्रथ युद्ध क्षेत्र के सबसे अंतिम सीमा में थे, क्योंकि उसको छुपा के रखा था। तो 60 किलोमीटर, 56 से 60 किलोमीटर इतना रथ भगवान ने चलाया था उस दिन उस तक पहुंचने के लिए। ये हुआ आधा हिस्सा, और इस तरह से वी कैन काउंट, इस तरह से तो सब मिला करके अगर देखा जाए तो 100 किलोमीटर जितना एरिया होगा जिसमें ये युद्ध हो रहा था, 100-150 किलोमीटर का एरिया होगा जिसमें ये युद्ध हो रहा था। आज का जो कुरुक्षेत्र है वो तो छोटा है, लेकिन वो इतना फैला होगा उस समय कि जहां पर मैदान है ना, कोई वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई झोपड़ी वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं। और ये युद्ध क्षेत्र जो होता था इसके अलावा भी बहुत ज्यादा, बहुत सारे किलोमीटर तक उन लोग का रहने का व्यवस्था था। जनरली वो उससे भी बड़ा होता है ना, यू कैन इमेजिन, इज़न्ट इट, सबके रहने का व्यवस्था, सोएंगे, मेडिकल कैंप, उनको सबको रसोई घर, यू नो वो सब भी था उधर, एवरीथिंग वाज देयर। इतना बड़ा कुकिंग होता था, और ये कुकिंग करने करके जो लंच बॉक्स वाले जो थे वो लंच बॉक्स वाले असैनिक माने जाते थे, वो लोग अपने अपने घोड़े पर सवार होकर के अलग अलग योद्धाओं को, सैनिकों को भोजन के लिए, कुछ के लिए भोजन उधर लेके जाते थे और कुछ लोग भोजन के लिए इधर आते थे। इस तरह से इन लोग का भोजन होता था दिन में, कुछ लोग यस, लेकिन उनका वध नहीं, उनका वो अवध्य होते थे, बीच युद्ध में जाते थे लेकिन उन पर कोई वार नहीं होता था क्योंकि वो सैनिक नहीं है।
अलग कॉस्ट्यूम, ड्रेस के
सब कुछ अलग, कॉस्ट्यूम अलग, पूरा अलग ही, वो अलग ही उनका है ड्रेस कोड, यू नो, तो उनको कोई परेशान नहीं करेगा।
हाँ,
डिसिप्लिन वाला। और ये लोग भी ऐसे मूर्ख नहीं थे कि बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास फाइट हो रही है और बीच में जाके घुस जाएंगे ऐसे। द पॉइंट इज कि पानी पहुंचाना, आप अंदाजा तो लगा सकते हैं ना, कोई बंदा सुबह से लेकर युद्ध कर रहा है तो शाम तक बिना पानी पिए कैसे जी सकता है ना। तो उन सबको पानी पहुंचाना, भोजन पहुंचाना, कुछ फर्स्ट एड किट भी पहुंचाना होता है, जरूरी थोड़ी कि सबको सब वापिस आओ मेडिकल कैंप में, कुछ को फर्स्ट एड उधर ही, यू नो, कुछ ये रुई वुई वहीं पर लगा देने का, ये सब काम। तो ये सारा मिला करके नहीं नहीं तो कितना बड़ा एरिया होगा, इज़न्ट इट। और उसके बीच में भगवान ने दो सेनाओं के बीच में जाके रथ को रखा। सेनयोरु भयोरु अध्ये मध्य 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 बीचों बीच सेंटर में वहां पर जाके रखा, ताकि सेम डिस्टेंस, पीछे देखो आगे देखो दोनों सेम डिस्टेंस। इस तरह से भगवान ने अर्जुन को रथ को खड़ा किया। यस, जिसमें भगवान के भक्त वात्सल्य का महिमा बताया है, जिसमें भगवान ये मायावादी सिद्धांत की चर्चा की है, फिर जीवों का और भगवान का जो अलग अलग नेचर है, जैसे हमने संक्षेप में चर्चा की कि उनका पतन नहीं होता, इनका पतन होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे आचार्य है, जीव गोस्वामी, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी, ये सब प्रसिद्ध हमारे आचार्य है जिन्होंने इस पर कमेंट लिखी है। इधर स्पेसिफिक यू आर आस्किंग अबाउट, या तो ये दिस इज जनरल कमेंट्री व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। प्रभुपाद ने इतना एम्फसाइज, प्रभुपाद एक्चुअली सारांश लिया है सबका समरी के रूप में, सो दैट वे वी आर डिस्कसिंग। सो टेक्स्ट नंबर
24,
अच्युता अच्युता ट्वेंटी फाइव। यहाँ पर अर्जुन को 24 नंबर के श्लोक में अर्जुन को गुड़ा केश शब्द से बोला है ना। प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में गुड़ा केश का अर्थ क्या है। गुड़क शब्द का अर्थ होता है निद्रा, गुड़क, और जिसको जीत लेता है वो गुड़ा केश, जो निंद्रा को जीत लेता है वो गुड़ा केश है। निंद्रा को अज्ञानता भी बोलते हैं, हाँ, निंद्रा की अवस्था अज्ञानता, तो अज्ञान को भी जिसने जीत लिया उसको भी गुड़ा केश बोलते हैं, इग्नोरेंस, अंधकार, वो जिसने जीत लिया उसको भी, जिसने निंद्रा पर विजय प्राप्त की। अर्जुन अगर नहीं सोएगा तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन इनको नहीं सोएंगे तो प्रॉब्लम होगा, इनको अंदर भेज दो अब्बा, इनको उठाओ अंदर सो। सो महाभारत में और एक कथा भी आता है इसको लेकर के, जिसमें अर्जुन एक बार रात के समय में भोजन खा रहे थे, जनरली नहीं खाते, भीम खाते थे, अर्जुन भी पहुंच गया था उस समय। जनरली भीम का ऐसा था कि उसको जो दो लंच ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो तीन बार मिलता था वो उसके लिए काफी नहीं होता था। वो भीम सोचता था कि ये क्या चना मवरा खिलाते हुए, ज्यादा चाहिए था उसको। तो एक बार उसको बहुत भूख लगी थी, गुरुकुल में तो नियम होता था कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं होता था, तो एक बार भीम को बहुत भूख लगी तो किचन अंधकार में ही किचन में पहुंच गए और किचन में से कुछ खाने लगे, और अर्जुन भी आया उधर उसी समय, लेकिन उसने यहाँ पर कोई है जो कोई खा रहा है, कौन खा रहा है, तो ये कौन है। तो भीम ने बोला अर्जुन तुझे अगर भूख लगे तू भी खा ले, लेकिन किसी को बताना मत, चुप हो जा। तो अर्जुन ने पूछा, अर्जुन ने भी थोड़ा खाया, लेकिन अर्जुन ने पूछा कि आप कैसे खाते हो, अंधकार है यहाँ पर तो अंधकार में कैसे खा दो। तो भीम ने कहा वो खाने के लिए थोड़ी लाइट की आवश्यकता है, थोड़ी मुंह में ही जाएगा, आंख में थोड़ी जाएगा, नाक में थोड़ी जाएगा, तो मुंह में ही जाएगा। और एक कथा भी है महाभारत में कि इस तरह से अर्जुन एक बार रात के समय में भोजन ले रहा था और लैंप लगाया हुआ था सामने, और अर्जुन भोजन ले रहे थे, बच्चा था, और अचानक से हवा का तेज झोंका आया और लैंप बंद हो गया। अभी लैंप को ठीक करने अर्जुन नहीं गए, वही खाना खा रहे थे, चालू रखा, अब प्रसाद पा रहे थे अर्जुन, उस समय उसको मन में विचार आया, वो जैसे यहाँ पर भी भीम का जो कथा है उसमें भी अर्जुन को विचार आया कि अगर अंधकार में कोई व्यक्ति भोजन ले सकता है तो धनुष क्यों नहीं चला सकता, धनुष चलाने में क्या, अगर भोजन ले सकते हैं तो धनुष क्यों नहीं चल सकता। तो उस समय से अर्जुन ने रात को सोना बंद कर दिया गुरुकुल में। रात को मुश्किल से एक घंटा सोता होगा, एक दो घंटा प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रात को भी। आप समझो दिन में पढ़ते थे पूरा दिन, रात को प्रैक्टिस करते थे, अब कैसा होगा अर्जुन फिर, है ना, कितना स्ट्रांग वॉरियर होगा। तो अर्जुन अज्ञानता को जीत लिए थे, कुड़ाकेश अज्ञान को हटा दिए थे, निंद्रा या अज्ञान दोनों एक ही है, तमसोमा ज्योतिर्गमा अंधकार से बाहर आओ। तो नाउ टेक्स्ट नंबर 25 पढ़िए।
भीष्म द्रोण तथा विश्वकर्मा अन्य बधा राजाओनी उपस्थितिमा भगवान कहू हे पार्थ अहीं एकत्रित थयेला बधा कुरुजनों ने जो।
हाँ कृष्णानो अहीं कृष्ण यहाँ पर पहली बार कुछ बोले, है ना, फर्स्ट टाइम कुछ बोले। देखो देखो यहाँ पर फर्स्ट टाइम कुछ बोले, अभी तो भगवद गीता का कुछ, अभी तो बस ऐसा बता। देखो बीच को बीच रखा, फिर भगवान ने अर्जुन को कहा और सामने जो दिख रहे हैं ना कौन है जानते हो, कुरुस कुरु लोग है। अब पीछे मुड़ो पीछे और पीछे देखो क्या है, ये लोग कौन है देखते, ये लोग भी कुरु है, दोनों साइड कुरु है, दोनों ही साइड कुरु है। किसको मारना है, सामने वाले को मारना है। और भगवान ने क्या किया यहाँ पर लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ भीष्म एंड द्रोण, भीष्म द्रोण प्रमुखता, भीष्म और द्रोण के बीच में इधर उधर नहीं लगाया रथ, है ना। कृष्ण बहुत स्मार्ट है, बहुत चालाक थे, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको, अगर अर्जुन के रथ को किसी कारण से भीष्म द्रोण की जगह पर दुर्योधन के सामने ले गए होते तो वहीं से युद्ध शुरू हो जाता, वहीं से युद्ध, वही बोले अब पीछे पीछे कुछ नहीं करना है, युधिष्ठिर बोलो आक्रमण खत्म करो इधर को इसको। लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान चाहते थे कि अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवत गीता प्राप्त हो, भगवान ये चाहते थे। और अगर ध्यान से देखा जाए तो भगवान अर्जुन को उस जगह पर लाके छोड़ा जहां पर उसकी वास्तविक कसौटी होने वाली थी भीष्म द्रोण के सामने। जनरली भगवान का ये तरीका है, भगवान क्या सोचते हैं कि जो भी हमारी कमजोरी है वो हटाना चाहते हैं। अभी अर्जुन की जो कमजोरी थी वो भगवान जानते थे, तो भगवान परफेक्ट पॉइंट पर क्लिक किए, सही जगह पर मस्त भाई। और भीष्म और द्रोण ये दो ऐसे लोग हैं जिसको मारने के लिए अर्जुन तैयार नहीं होगा, ये लोग को मारने का तैयार हो गया फिर युद्ध खत्म, फिर तो युद्ध होगा और अर्जुन जीत जाएगा, क्लियर था। तो कृष्ण ने जानबूझकर रथ को उधर ही ले गए, अर्जुन ने नहीं कहा था मेरा रथ ले जाओ भीष्म के सामने, मेरा ले जाओ द्रोण के सामने, अर्जुन नहीं है वो तो एका सेना भयोर मध्य रथम स्थापय में चुना, ये कृष्ण मेरे रथ को दो सेनाओं के बीच में ले जाओ, बस इतना ही बोला था। लेकिन भगवान ने कहा, भगवान ने सोचा कि ठीक है मैं तो ले जाता हूँ, अब तुझे देखना है ना तो चल मैं दिखाता हूँ। देखने की बात हुई है ना, अभी अभी इसमें देखना क्या होता है, भगवान ने साफ साफ अर्जुन को बोल दिया कि देखो भाई दोनों साइड कुरु है, ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे वो दूसरे किसी वंश के हो तुम दूसरे किसी वंश के हो, तुम दोनों एक ही वंश के लोग हो, कुरु राजा के वंश, इसलिए कुरु बोलते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र ने बोला ये हमारे जो पुत्र है वो अकेले ही कुरु के वंश है, वो तो बाकी के जो है पांच वो तो पांडु के वंश है। हालांकि पांडु उस समय के थे, धृतराष्ट्र का भाई था, तो धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र है वो पांडव के सामने कौरव नहीं होने चाहिए, पांडव के सामने धृतराष्ट्र के पुत्र होने चाहिए। लेकिन अपने पुत्र को कौरव बोला और पांच पांडव को पांडव बोला, उनको फैमिली से अलग किया, भाई तुम हमारे वंश के नहीं हो, ऐसे तुम्हारा अलग करो सब कुछ, इधर नहीं। वो अलग, वो लास्ट टाइम हमने जो चर्चा किया था फर्स्ट लोक में, तो इस तरह से। लेकिन भगवान ने कहा भाई दोनों ही साइड एक ही वंश के लोग हैं, कुरु वंश के लोग हैं दोनों साइड। लेकिन फिर बलदेव विद्याभूषण ऐसा कहते हैं कि भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को प्रथा पुत्र बोला है ना, क्या बोला है, क्या क्या नाम है अर्जुन का नाम,
पार्थ,
पार्थ वही प्रथा पुत्र पार्थ। तो पार्थ का अर्थ होता है तुम मेरे बुआ के बेटे हो, मेरे पिताजी के बहन तुम्हारे माता होते हैं। कुंती वसुदेव को अपना भाई मानते थे, तो उन दोनों के बीच में आपस में भाई का भाई बहन का संबंध था, तो इसलिए वो बुआ का बेटा हुआ। तो कहा कि देखो मैं तो तुम्हारे बुआ का बेटा, तुम मेरे बुआ के बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हारा सारथी बनने को तैयार हूँ। लेकिन जब युद्ध होने वाला हो तब ऐसा सब नहीं करते, ये गलत है। क्या युद्ध के बीच में जाओ मुझे देखना है, ये सब बेकार की बात है। ठीक है अब तुमने बोला है तो ठीक है देख लो, थोड़ा हंसे भी भगवान मन में, देख लो अगर इच्छा है तो देखना है, तो मजाक करने लगे, देखो देखो सामने देखो कौन, देखो अभी संजय आगे का वर्णन बताते हैं कि अर्जुन किसको देखा, क्या क्या देखा, वो आगे के श्लोक में बताते हैं 26 में। बोलिए
बन्ने पक्षोनी सेनामुनी मध्यमा उभेला अर्जुने पोताना काकाओ दादाओ आचार्यो मामाओ भाईओ पुत्रो पौत्र मित्र तथा ससराओ तेम शुभेच्छको ने जोया।
हाँ प्रभुपाद इसमें लिखते हैं अर्जुन ने सब प्रकार के संबंधियों को देखा। छोटा तात्पर्य क्या, तो कोई तात्पर्य पढ़िए।
अर्जुन युद्ध भूमि पर पोताना सर्व प्रकार ना सगा सहजनों ने जोई सक्यो, ते पोताना पिता ना समकालीन पुरुषों ने भीष्म तथा सौंदर जेवा पिता मामो ने द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जेवा गुरुजनों ने शल्य तथा शकुनी जेवा मामाओ ने दुर्योधन जेवा भाईओ ने लक्ष्मण जेवा पुत्रों ने अश्वत्थामा जेवा मित्रों ने तेमज कृतवर्मा जेवा शुभेच्छको ने जोई सक्यो। ए सेनाओ ने पण ते जोई सक्यो के जेमा तेना अनेक मित्रों हता।
यस तो एक्चुअली ऐसा नहीं था कि सामने के साइड में जो लोग थे सब दुश्मनी थे, शत्रु ही थे, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें कई ऐसे लोग भी थे जिनसे अर्जुन की कोई शत्रुता नहीं थी, अर्जुन उनको मारना भी नहीं चाहता था, जैसे कृतवर्मा, कृतवर्मा से अर्जुन की कोई फाइट नहीं थी। फिर शल्य तो उनके सबके मामा थे, आई मीन महावीर के भाई, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं अर्जुन शल्य से। तो फिर कृपाचार्य द्रोणाचार्य ये तो गुरुजन है, उनको तो चरण में फूल डालते है। ऐसे इन सब का दर्शन किया अर्जुन ने, तो ऐसे इतने सारे रिश्तेदार। एक्चुअली ये यहाँ पर वर्णन इसलिए किया गया है कि ज्यादातर अर्जुन ने जो देखा उसमें ये सब रिश्तेदार ही थे, उसमें कोई शत्रुओं का तो बहुत कम। 100 कौरव और कर्ण को छोड़कर, शकुनी को छोड़कर ज्यादातर लोग को अर्जुन शत्रु नहीं मानता था। एक दूसरे देखा जाए तो अर्जुन किसी को शत्रु नहीं मानता था, लेकिन ये सब जात धर्म के बड़े प्रतीक थे। सो आगे वाले श्लोक में पढ़िए। हाँ तो जब अर्जुन ने देखा 27 था, यस, करुणा से अभिभूत हो गया अर्जुन। तो यहाँ पर अर्जुन का परिवर्तन हुआ अपने सगाओं और मित्रों सबको देख करके, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ऐसी आशा नहीं रखी थी कि अर्जुन ऐसा कहेंगे। ही बिकेम ओवरवेल्म विथ कंपैशन एंड स्पोक लाइक दिस, खास करके भीष्म द्रोण। भीष्म उनके पितामह थे, भीष्म की गोदी में खेलते थे अर्जुन, और भीष्म और अर्जुन के बीच में स्नेह जो था वो बाकी सब भाइयों से अधिक था। जितना भीष्म अर्जुन को पसंद करते थे, इतना सौ कौरव और बाकी चार पांडवों को इतना प्यार नहीं दिया था जितना अर्जुन को दिया था। महाभारत में ऐसा पाया जाता है कि कई बार तो अर्जुन जब छोटा था तो भीष्म के ही गोदी में जाके भोजन ले लेता था, भीष्म के ही बिस्तर पे सो जाता था रात को, और फिर सैनिकों को बोलते भाई दूसरे दिन सुबह आके अपने अर्जुन को ले जाना, अभी सोने दो, रात को सो गया है तो। इतना उसको लगाव था, प्रेम था भीष्म के प्रति, दादा थे उनके। तो भीष्म को देख करके स्वाभाविक था कि अर्जुन विचलित होगा, और द्रोण जिनसे तो ये सारी विद्या सीखी है, तो ये भीष्म और द्रोण को देख करके अर्जुन 100% डिस्टर्ब होगा ऐसा भगवान को पता था, हालांकि उसको नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर देखा जाता है कि किस तरह से अर्जुन ने, जैसे हमने पिछली बार बताया था आपको कि अब 28 नंबर श्लोक से अर्जुन अपने अपनी कारण बताना शुरू करते हैं युद्ध नहीं करने के कारण। हमने जैसा आपको पहले बताया था कि पांच प्रकार की कैटेगरीज में ये कारणों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो पांच जो कैटेगरी है वो हम आपको पहले बता देते हैं, फिर आगे के श्लोक में इसको समझना आसान हो जाएगा। पहला कैटेगरी है दया। अर्जुन के हृदय में बहुत ज्यादा दया थी, वो उन लोग को मारने वाला था जो उनको बहुत प्रिय थे, उससे वो बहुत ज्यादा परेशान था। सो दया, वो नहीं चाहता था अपने प्रिय लोग, प्रियजनों को मारना, तो कंपैशन, ही नेवर वांटेड टू किल। फिर एंजॉयमेंट, दूसरा है भोग। अर्जुन सोचता थे कि ये इतना इम्पोर्टेंट रीजन नहीं है, फिर भी अर्जुन ने ये चीज बताया एक श्लोक दो श्लोक में। वो ऐसा बोलता है कि ये सबको मार देंगे तो फिर बचेगा कौन, वेल डन अर्जुन, वेल डन कौन बोले, कोई होगा तो बोलेगा ना। अगर आप समझ लो कि अगर आपने कोई अच्छा फर्नीचर लिया है, कोई गाड़ी है आपका, कोई घर है अच्छा, आपने कुछ नए कपड़े खरीदे हैं, या आपने कोई अच्छा मोबाइल फोन खरीदा है या कुछ, तो आपको दो चार लोग बोलेंगे दिखाने वाले, किसी को बताएंगे नहीं। तो अगर आपको बोल दिया जाए भाई तुम्हारे घर में कितना भी फर्नीचर करो, घर के अंदर कोई आने वाला नहीं, तो आपके मन में ठीक है भाई, जो है हम तो सिंपल लोग हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं सब इतना बड़ा कर। लेकिन कई बार क्या होता है, इसको बोलते हैं आप्तजन। आप्तजन में कई बार ज्यादातर वस्तुएं लोग अचीव करते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हमारे पास ऐश्वर्य है, हमारे पास धन है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास ये है वो है। तो ये उद्देश्य, अभी अर्जुन सोचते कि सभी सबके सब मर जाएंगे तो हमारा जो आनंद है वो शेयर किसके साथ करेंगे। अच्छा महल है तो बुलाएंगे भाई आओ भाई, मेरे भाई हो, मामा है, चाचा है, सब आओ, हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। और कोई बचेगा ही नहीं फैमिली में तो क्या करेगा जीवन जी के। तो ये एक उदाहरण था, अर्जुन का एक कारण था कि इन लोग को मारने से कोई सुख मुझे दिखाई नहीं रहा इसमें से। तो पहले हम लोग भी सोचते हैं ना किसमें सुख मिलेगा, ये करेंगे तो सुख मिलेगा, तो ये अर्जुन भी सोच रहे इसमें मुझे कोई सुख नहीं दिखाई देगा। तीसरा था रीजन अर्जुन नहीं लड़ने का, परिवार का विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली। कुटुंब में जो है परिवार है वो नष्ट हो जाएगा, इतने सारे क्षत्रिय मर जाएंगे तो सबकी पत्नी विधवा हो जाएगी, और स्त्री जो है वो असुरक्षित हो जाएगी, जैसे आज के समय में देखा जाता है। आज के समय में क्या पाया जाता है, स्त्रियों की सुरक्षा किसी के पास ना, किसी के हाथ में नहीं है। और प्राचीन समय में, पहले के समय में प्रभुपाद यूज्ड टू से स्त्रियां तीन लोगों की सुरक्षा में रहती थी। एक तो जब उनके बाल्यकाल में उनके पिता के संरक्षण में रहते हैं, जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता। विवाह के पश्चात उनका सारा रक्षण का जिम्मेदारी उनके पति का होता है, और वृद्धावस्था में उनका जो बड़ा बेटा होता है वो माता का रक्षण करता है। तो तीनों, ये तीन के अलावा और कोई स्त्री का रक्षण का जिम्मेदारी इन तीन के पास होती है। और प्रभुपाद कहते हैं कि ये तीन लोग के एक बार कोई भी स्त्री ये तीन का संरक्षण छोड़ देगी तो वो पूरे संसार में उत्पात मचेगा, पूरे संसार में अस्त व्यस्त, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा सिस्टम पूरा। तो अनवांटेड वर्ण संकर प्रजा का जन्म होगा, जिसमें स्त्री का रक्षण नहीं होगा, स्त्री का चरित्र नष्ट हो जाएगा, और उनसे जो प्रजोत्पत्ति होगी, जो बच्चों का जन्म होगा, वो आतंकवादी बनेंगे, वो विनाश वृत्ति वाले होंगे, विनाश करने की वृत्ति वाले, है ना। बच्चे ही होते हैं, हमने देखा है आजकल के बच्चे बहुत विचित्र होते हैं, देख के डर लगता है, बच्चे को देख के डर लगता है। तो ये अर्जुन का पॉइंट था कि अगर सारे बुजुर्ग लोग, वरिष्ठ लोग, वृद्ध लोग, पुरुष लोग सब मर जाएंगे, इसमें स्त्री तो थी नहीं, सबके सब पुरुष थे, तो स्त्रियां तो सब विधवा हो जाएगी और असुरक्षित हो जाएगी। तो ये स्त्री अगर सब मर जाए, स्त्री अगर असुरक्षित हो जाएगी तो पूरा समाज जो है वो बिखर जाएगा, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा सोसाइटी। ये अर्जुन का रीजन था। कोई पिंड क्रिया वगैरह कोई करेगा, श्राद्ध कौन करेगा, ये अर्जुन का एक पॉइंट था। फिर चौथा पॉइंट था अर्जुन का नहीं लड़ने का, वो है पाप में परिणाम का भय, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन, पाप में परिणाम जो है उसका भय। अर्जुन सोचते थे कि इन लोग को मारेंगे तो ये तो स्वर्ग में चले जाएंगे, और इन लोग को मारने का पाप मुझे लगेगा, मैं नरक में जाऊंगा। ये लोग तो कुरुक्षेत्र में है, मृत्यु प्राप्त करेंगे, वीरगति को प्राप्त करेंगे, वीरगति मिलेगी तो स्वर्ग में जाएंगे, और मैं, मुझे मारने की हत्या करने का पाप लगेगा। अभी इनका हत्या करके उनके लहू से जो रंगे हुए जो भोग है वो क्या भुगतने का, इससे तो पाप लगेगा और हम आए धर्म करने और जाएंगे नरक में, तो ये तो ठीक नहीं है। और पांचवा था कंफ्यूजन, इंडिसीजन, अनिर्णय, पता नहीं अब करना क्या चाहिए। अभी ये तो सब मैं सोच रहा हूं लेकिन क्या ये योग्य है कि मैं, हम लोग इन सबको मार दे एक छोटे राज्य के लिए। एक सत्ता में अगर दुर्योधन आता है तो क्या इतना बड़ा अनर्थ हो जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है, ये इसमें करना क्या चाहिए, ऐसा अर्जुन का प्रॉब्लम था, ये डाउट था, करना क्या चाहिए। कि ऐसा तो नहीं कि हम लोग कुछ ज्यादा ही सत्ता को लेकर के हम लोग युद्ध करने पर तुला है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इट डजंट लुक गुड, ये कार्य करने के लिए उचित नहीं है, ऐसा करना नहीं चाहिए। अभी दुर्योधन राजा बन जाता है तो हमें बड़ा उद्दर रखना चाहिए, बड़ा मन रखना चाहिए, तो ये विचार नहीं, तो फिर ऐसा सोचना, ऐसा दूसरा विचार ये था कि एक नंबर का पाखंडी, एक नंबर का दुर्बुद्धि है, भगवान का भी आदर नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को राजा बना के क्या करना है, ये तो पूरे संसार को नरक में ले जाएगा। इसलिए धर्म का राजा युधिष्ठिर ही होने चाहिए, इसके लिए अगर युद्ध भी करना पड़े ये सब अर्जुन के माइंड में चल रहा था, कंफ्यूजन, इनडिसीजन होता है। हम भी कई बार हो जाते हैं, क्या करें क्या करें, ऐसा करे नहीं करे, ऐसा करे नहीं करे, क्या करे ऐसे। तो ये अर्जुन का स्पेशल क्वालिटी है, सॉफ्ट हार्टेड है अर्जुन, उसका हृदय बड़ा ही कोमल है, दयालु है, लॉजिक सोचता है, तर्क से सोचता है कि एक आदमी को राजा बनाने के लिए 64 करोड़ लोग को मारना कितना उचित है, ये सब सोचता है। तो इस तरह से बहुत बुद्धिशाली और सुसंस्कृत दिखता है अर्जुन, बातचीत करने में, सोचने में वगैरह वगैरह। तो वो हम आगे सुनेंगे कि अर्जुन ने वाच, अर्जुन ने वाच, अर्जुन ने बोलना शुरू किया। सुनिए अभी अर्जुन क्या कहते हैं।
माय डियर कृष्णा, सीइंग माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स प्रेजेंट बिफोर मी इन सच अ फाइटिंग स्पिरिट, आई फील द लिम्ब्स ऑफ माय बॉडी क्विवरिंग एंड माय माउथ ड्राइंग अप।
यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि मेरा जो शरीर कांप रहा है, मुंह सूख गया है, ऐसी अवस्था, मेरा युद्ध करने का पूरा चला गया स्पिरिट ही। अभी यहाँ पर अर्जुन का ये सॉफ्ट हार्टेडनेस जो है, हृदय इतना सॉफ्ट है कि इसके इसी के तात्पर्य में प्रभुपाद कहीं पर लिखते हैं, एट द स्टाइल वेयर इट इज, ये श्लोक है ना, जैसे भक्ति भगवती अकिंचना, इसमें प्रभु यहाँ अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे। प्रभुपाद अप्रिशिएट करते इस श्लोक में कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि अर्जुन बहुत कमजोर था और सोचा कि शायद मैं हार गया तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये हृदय की दुर्बलता नहीं थी उसकी, ये वैष्णव क्वालिटी था उसका कि वो बिना किसी, वो जनरली भक्त लोग होते वो झगड़ा करना पसंद नहीं करते, जहां पर भी झगड़े जैसा वातावरण क्रिएट होता है वहां से गुड बाय हो जाते और पसंद नहीं करते उनको, ये झगड़ा वगड़ा पसंद नहीं होता है भक्तों को। तो अर्जुन के हृदय में ऐसा लक्षण दुर्बलता के कारण नहीं है, हृदय की कोमलता के कारण है। प्रभुपाद फिर एक श्लोक बताते तात्पर्य में कि जिस व्यक्ति में जो भगवान की भक्ति होती है उसमें देवताओं के सारे गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अगर कोई वैष्णव बनता है तो अपने आप उसका मन कोमल होता है, हृदय कोमल होता है, संयमित होता है, शांत होता है, विनम्र होता है, सहनशील होता है, ये सब कुछ अपने आप हो जाता है, उसको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन जो अभक्त है वो कितना भी महान बड़ा पर्सनालिटी हो, कोई स्टार हो, सिनेमा स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, या कोई लीडर हो, या फिर यू नो वो पार्लियामेंट में आठ मारने वाला हो, या कोई भी हो कोई भी हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस यू नो, उसमें कोई अच्छे गुण कहां से आएंगे, डजंट मेक एनी डिफरेंस। हरा अभक्त से कुतो महत्व, उसमें कोई महान गुण कैसे आएगा, उसको कहता हूँ ये बड़ा अच्छा आदमी है, वो बड़ा अच्छा आदमी है। भाई अच्छा आदमी होने से कुछ नहीं होता है, भक्त होने से कुछ होता है, महान होने से, मान तो हाथी भी होता है, हाथी का हाथी की मानता है, हाथी भी साइज में बड़ा है, ऐसे ऐसे महान होने का कोई फायदा नहीं है। सो दिस आर स्पेशल क्वालिटी व्हाट अर्जुन हैज। पढ़िए आगे 29 में।
મારા સમગ્ર શરીર કંપ થઈ રહ્યું છે, મારા શરીરે રોમાંચ થઈ રહ્યું છે, મારું ગાંડીવ ધનુષ મારા હાથમાંથી સરી પડે છે અને મારી ત્વચા બળી રહી છે।
તો અર્જુન કે લક્ષણ અમે પ્રાપ્ત હોતે હૈ तो उसमें प्रभुपाद एक जगह लेक्चर में बताए कि अर्जुन कायर नहीं था। ये जो समस्या थी वो देहात्म बुद्धि के कारण थी। जो ओन मैंने वो बता रहा हूं, मुझे अपने स्वजनों को मारना है ऐसा वो सोच रहा था। अभी ये स्वजन क्या होता है, स्वजन किसे कहते हैं? स्वजन का अर्थ क्या हुआ? शरीर का संबंध, वही तो स्वजन हुआ ना। अगर समझ लो कि कोई व्यक्ति मेरे मामा है तो मामा कहां से आए? शरीर का संबंध है तब मामा हुए ना, तो आत्मा का संबंध नहीं है इसमें। तो ये स्वजन शब्द का, जो मेरे स्वजन को हत्या करनी है, ये है अज्ञानता। ये अज्ञानता, ये मेरे अपने लोग है, परिवार के सदस्य है, ये है अज्ञानता। अभी हमें लगेगा कि ये कैसा अज्ञानता है। ये अज्ञानता इसलिए है क्योंकि ये देहात्म बुद्धि है, शरीर और आत्मा को एक मानने की बुद्धि है। शरीर और आत्मा एक नहीं है, ये चीज अर्जुन भूल गया, ये चीज अर्जुन भूल गया। तो इसलिए जब भी स्वजन के विषय में, एक्चुअली हम सबको ही अपना स्वजन मानते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, है ना, पूरा संसार कृष्ण का है। जितने भी वास्तव में जो स्वजन की बात हो, अगर कोई करता है मेरा स्वजन है, तो पूरा संसार उसका स्वजन है। क्यों? सभी कृष्ण के अंश है। लेकिन पर्टिकुलर एक व्यक्ति को स्वजन मानना, ये देहात्म बुद्धि है, ये देहात्म बुद्धि है। इसलिए अर्जुन को यहाँ पर इस प्रकार की लक्षणों का जन्म हुआ, इस प्रकार का मोह उत्पन्न हुआ। अभी 30 नंबर एक प्रसन्नता से होता है और एक भय या दुख से होता है। हाँ, कोई कांप जाता है भय के मारे और कोई कांपता है प्रेम के कारण। तो यहाँ पर जो कंपन है वो प्रेम के कारण नहीं हो रहा है, ये भय के कारण और दुख के कारण हो रहा है। अतिशय दुख हो रहा है उसका, अतिशय भय हो रहा है। वो सोच रहा है कि इनको मारना है, मुंह सूख जाता है। शायद हमना लाइफ में होता है ऐसा अनुभव, आपको शायद हुआ होगा कभी कभी, ऐसा हो जाता है कि अचानक से कोई ऐसी समस्या आपके सामने आ जाती है, आपकी मुंह सूख जाता है आपका, है ना, आप इतना परेशान हो जाते हैं कि आप कुछ बोल नहीं पाते। कई बार मुंह सूख जाता है आपका, पानी पीना पड़ता है। दैट सो मच, ऐसा ड्राइनेस अर्जुन का, इस तरह से वो इतना विषाद हुआ उसको। हाँ, फिर नेक्स्ट।
मारा थे बुरे व्यवहार के मध्य कारण के मारो मन जाने धन्य थे, अने जाने हूँ मारी जात में बुरी रह रही थी बड़ी हे केशव मने बड़ा अवड़ा अशुभ चिन्ह देखा थी।
यस, तो आई सी आई एम नाउ अनेबल टू स्टैंड हियर एनी लॉन्गर। अब तो मैं खड़ा भी नहीं रह पाता हूँ, पहले तो खड़ा रहता था एक शेर की तरह, अब तो मेरे पांव भी डगमगाते हैं ना। कहीं कहीं बार होता है ना, कोई व्यक्ति के किसी करीबी रिश्तेदार का मृत्यु हो जाता है तो उसका चलना भी मुश्किल हो जाता है, वो चल भी नहीं पाता ठीक से, उसको पकड़ के ले जाना पड़ता है ना। उसको हुआ कुछ नहीं, उसके पांव में चोट वोट नहीं आई है, लेकिन वो परेशान है, वो बहुत दुखी है, वो बहुत भयभीत है। तो अर्जुन जो है वो बोल रहे, मैं अभी खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ, अपना अस्तित्व ही भूल जा रहा हूँ, पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं अर्जुन हूँ वो ही भूल गया। और अर्जुन कभी ऐसा हो ही नहीं सकता अर्जुन का, और भगवान भी चाहते हो ये क्या हो रहा है इसको, और मेरा मन जो है वो विचलित हो रहा है, रेस्टलेस हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है, बहुत कंफ्यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, और मुझे यहाँ पर केवल दुर्भाग्य दुर्भाग्य दिखा रहा है, निमित्तानि विपरीतानि, सब कुछ विपरीत दिखाई दे रहा है। मैं इधर आया हूँ लड़ने के लिए और इधर सब कुछ उल्टा ही है जी, सब कुछ ये है ना, कौन सा है 29:30 नजे शक्नो व्यवस्था तुम ब्रह्मति निमित्तानि तपश्यामि विपरीतानि केशव निमित्तानि तपश्यामि। अब कुछ कर सोचा है कुछ और परिणाम आता है कुछ और, ये हम सबकी समस्या है। हम करते कुछ और परिणाम आता है कुछ और। ये हम सब में सबको यहाँ पर हाँ दैट पर्टिकुलर पार्ट अर्जुन का युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। अभी उसको ऐसा लग रहा तो मैं तो जीऊंगा, जीत गया तो भी हार गया, हार गया तो भी हार गया, ऐसी अनुभव कहीं पर भी ऐसे कहीं पर भी देखो दुर्भाग्य दुर्भाग्य। फिर कहा है शत्रु पर विजय पर भी सुखी नहीं, मित्रानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वो सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, ये है पॉइंट, ये समस्या हमारी। हम हमारे स्वार्थ से जुड़ करके, हमारे स्वार्थ से प्रेरित होकर के हम किसी कार्य को करते हैं। जिस कार्य में अगर हमारे लाभ होता है उसी कार्य को हम करना चाहते हैं, और जनरली हमारा जो लाभ होता है वो प्रेय होता है, श्रेय नहीं। दो प्रकार के लाभ होते हैं, एक होता है श्रेय, दूसरा होता है प्रेय। प्रेय शब्द का अर्थ है शॉर्ट टर्म गेन, शॉर्ट टर्म बेनिफिट। अभी मुझे कुछ फायदा दिख रहा है कि नहीं, अगर मैं हरे कृष्ण आंदोलन में जाता हूँ तो अभी मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं, क्या 10-20 लाख रुपए का लोन देंगे कोई कि नहीं, या कोई किसी प्रकार का लाभ हो रहा है, इंद्रिय तृप्ति का लाभ। हम जनरली प्रेय को ज्यादा भाव देते हैं, इंस्टेंट क्या फायदा होने वाला है, अभी क्या फायदा होगा। और बुद्धिशाली लोग जो होते हैं वो श्रेय देखते हैं, श्रेय का अर्थ लॉन्ग टर्म बेनिफिट, आगे जाके मुझे फायदा क्या होने वाला है वो देखते हैं, अभी फायदा हो रहा है कि नहीं वो नहीं देखते। जनरली लोग ये नहीं जानते कि उसका वास्तविक स्वार्थ क्या है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नते स्वार्थ गतिम ही विष्टुम दुराशया ये बहिरर्थ मानना। जो मनुष्य जो है दुर्बुद्धि, वो ये नहीं समझ सकते कि वास्तविक उनका स्वार्थ है भगवान की इच्छा में, भगवान की इच्छा पूरी करने में उनका वास्तविक स्वार्थ है। होता क्या है, हम अपने अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर के किसी कार्य को स्वीकार करते हैं, किसी कार्य को अस्वीकार करते हैं, एक्सेप्टिंग रिजेक्टिंग। और ये जो कार्य को स्वीकार करना और अस्वीकार करना हमारे हमारे द्वारा जो होता है उसमें परिणाम क्या आता है, निमित्तानि विपरीतानि। परिणाम क्या आता है, इसका अपोजिट, चाहते हैं हम कुछ और होता है और कुछ और, ये परिणाम हमें प्राप्त होता है। अभी हो सकता है कोई व्यक्ति कहे नहीं नहीं जो मैं जो चाह वही हुआ, लेकिन वास्तव में वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रेय था, ये श्रेय नहीं था। श्रेय तो क्या होता है, जो आपको लॉन्ग टर्म फायदा दे, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट, जो लॉन्ग टर्म लाभ है, वो कभी भी निहित स्वार्थ में नहीं होता है। लाभ केवल विष्णु के स्वार्थ गति को अगर हम समझते हैं, इंद्रियों का स्वार्थ नहीं, भगवान के प्रसन्नता का स्वार्थ। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं किसी को भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा था। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में नहीं थे। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए बहुत ही कष्ट उठाने पड़ते हैं। कष्ट क्यों उठाने पड़ते हैं, क्योंकि वो अपना स्वार्थ भूल गया है, वास्तविक स्वार्थ क्या है, इसलिए कष्ट उठाना पड़ता है। लोग कई बार आके हमारे पास आते, कुछ लोग रोते ये हो गया वो हो गया। अब उसको उस समय तो ये नहीं कह सकते भैया तेरा स्वार्थ ही गलत है, ये तो बोल ही नहीं सकते उसको। फिर उसको फिर हम धीरे धीरे बताते हैं ठीक है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगली बार से है ना भगवान जो बताया ना उस प्रकार से किया करो, भक्तों ने जो बताया उस तरह से किया करो, भक्तों की संगति करो। फिर वो धीरे 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 समझ जाते हैं, अगर उसमें थोड़ा बुद्धि होगा तो समझेगा कि हाँ मेरा जो कष्ट है उसका परिणाम मुझे इसलिए भुगतना पड़ता है क्योंकि मैंने अपना स्वार्थ देखा। मैंने कृष्ण का स्वार्थ नहीं देखा, चैतन्य महाप्रभु का स्वार्थ नहीं देखा, संस्था का स्वार्थ नहीं देखा कि इस्कॉन कैसे आगे बढ़ेगा, आंदोलन का स्वार्थ नहीं देखा, मैंने अपना निजी स्वार्थ देखा। चाहे मैं दीक्षित हूँ, ब्राह्मण दीक्षित हूँ, कैसा भी हूँ, लेकिन अगर जब मैं मेरा स्वार्थ देखूंगा तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगर मैं कृष्ण का स्वार्थ देखता हूँ, मैं प्रभुपाद का स्वार्थ देखता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये है हमारा समस्या। तो निमित्तानी विपरीतानी को आप समझ लेना, प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ दिया।
यहाँ पे अर्जुन ने कृष्ण को कहा केशव,
केशव मारने वाला, यस मेरे में भी केशी जैसा असुर है, उसको मारो। यस प्लीज डोंट लिव हिम लाइक दिस, किलर ऑफ केशी डीमन प्लीज, मेरे मंदिर छुपे जो असुर है उसको भी खत्म करो। तो ऐसा प्रभुपाद बताए निमित्तानि विपरीतानि। अभी यहाँ पर हमने ऐसे पहले बता दिया था कि अर्जुन के जीत के बहुत सारे कारण थे, हनुमान का ध्वज, कृष्ण का सारथित्व, फिर अर्जुन धर्म के पक्ष में था, कुरुक्षेत्र जैसी पवित्र भूमि में युद्ध हो रहा था, तो ये सब चीज वो देख करके ये तो क्लियर था कि अर्जुन ही जीतने वाला है। अभी अभी अर्जुन मारेंगे या नहीं मारेंगे ये सब कुछ मारेंगे तो अगर वो मारेंगे तो राज्य मिलेगा, नहीं मारेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, इसमें नुकसान का है। और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि सब जगह दुर्भाग्य दुर्भाग्य है ना, अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे सब जगह दुर्भाग्य दिखा रहा है, वो दुर्भाग्य है कहाँ, मरेगा तो स्वर्ग जाएगा, जिएगा तो राज्य मिलेगा, तो इसमें दुर्भाग्य कहाँ मिलता है, कहीं पर भी तो दुर्भाग्य नहीं है। लेकिन वो सोचता है ऐसा कि उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, उसकी इच्छा के विपरीत हो रहा है। हाँ आया, अब आया पॉइंट पर, भगवान चाहते थे अब तो पॉइंट पे आ कि तेरी इच्छा नहीं है इसलिए ये सब नाटक है। तो भगवान नहीं चाहते कि हम हमारी इच्छा को या हमारे स्वार्थ को भगवान के स्वार्थ के सामने रखें। अब देखो अगर जैसे अर्जुन ने अपना स्वार्थ रखा, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, ये सब हो गया ना शुरू, अपना स्वार्थ देखा तो देखो परिणाम आ गया। अभी देखो आगे क्या कहता, अभी आगे से ये 31 आया ना, 31 से सेकंड रीजन उसका शुरू होता है, देखो पढ़ो 31 पढ़िए।
युद्धमा मारा पोताना स्वजनों ने हराई कल्याण केवी केवी रीते प्राप्त थई सके ये हूँ जोई शकतो नथी, अने हे प्रिय कृष्ण हूँ तेनाथी कोई विजय राज्य के सुखनी पण इच्छा राखतो नथी।
अर्जुन कह रहे हैं कि हालांकि मैं जीत इन सबको मार करके जीत भी गया तो होगा क्या, ये लोग तो सब लोग का ऊर्ध्वगति मिलेगा, इन सबको अच्छा राज्य मिलेगा, और मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं, एनी गुड, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं होने वाला, अपने लोग को मारने से क्या फायदा। तो इसलिए अभी युद्ध की इच्छा नहीं है। अभी देखो यहाँ आगे ना गया इच्छा, अभी युद्ध की इच्छा तुम्हें तुम्हारी इच्छा है, नहीं इच्छा से क्या मतलब, नहीं मैं नहीं चाहता, अब तुम नहीं चाहे तो क्या हो गया, तुम कौन से बड़े धर्म आत्मा हो, धर्म के राजा हो, या फिर तुम कहां से बड़े परमेश्वर हो कि तुम्हारी इच्छा का, भगवान की इच्छा महत्वपूर्ण है, मेरी इच्छा का क्या महत्व है, नहीं मैं चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, अच्छा तुम्हारी इच्छा कोई वैल्यू नहीं है, इच्छा किसकी पूरी होती है, भगवान की इच्छा पूरी होती है, हमारी इच्छा भगवान पूरी करते हैं, अगर वो नहीं करना चाहे तो नहीं करेंगे, इससे वो बंधे हुए नहीं है, वो नहीं मैं नहीं चाहिए, मुझे कोई यहाँ पर अभी कोई इच्छा नहीं युद्ध करने की, तब भगवान ने सोचा ये क्या बकवास कर रहा है। अभी नेक्स्ट, अभी तीन श्लोक है या चार श्लोक है, पढ़िए।
हे गोविंद, अमने राज्य सुख तथा जीवन थी पण सो लाभ थवानो छे,
કારણ કે જે લોકો માટે અમે એ સર્વ ઈચ્છીએ છીએ તેઓ બધા જ આ કુરુક્ષેત્રમાં ગોઠવાયેલા છે. હે મધુસૂદન, જયારે ગુરુજનો, પિતૃઓ, પુત્રો, પિતામા, મામા, સસરા, પૌત્રો, શાળા તથા અન્ય બધા સગા સંબંધીઓ તેમના પ્રાણ તથા ધન તજવા તત્પર છે અને મારી સામે ઉભા છે, ત્યારે ભલે તેઓ મને હણી નાખે તોય હું આ સૌનો સંવાદ કરવાની શા માટે ઈચ્છા કરું? જે જીવ માત્રના પાલનહાર, બદલામાં મને આ પૃથ્વી તો શું પણ ત્રણેય લોકનું રાજ્ય મળે તો પણ આ બધાની સાથે લડવા હું તૈયાર નથી. ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને હણીને અમને કઈ પ્રશંસા પ્રાપ્ત થવાની છે?
વાહ, કે વાત હે અર્જુન, બહુ બઢિયા બતા, તાલિયા હો જાય ઇસકે બારે મે, બહુ બડી વાત બતા દે અર્જુન ને, હે ના? ભાઈ યે બતાએ કે જો કનિષ્ઠ લોગો તો હૈ વો જાતે ઇસમે કોઈ લાભ નહીં, ફિલોસોફી બતાતા આપકો હોતા ક્યા ઉનકા અપના કોઈ સ્વાર્થ હોતા હૈ ઉસમે. તો યે અર્જુન જો ભાઈ ફિલોસોફી બતા રહા હૈ ના, સબ અચ્છા દિખા રહા હૈ. હાલાકી એક જગ્યા પ્રભુપાદ ને બતા કે ઉસકા જો કમ્પેરિઝન થા વો વૈષ્ણવ, અબ યે જો લોજિક વગેરે જો યુઝ કર રહા હૈ, ઇન્ટેલિજન્સ દિખા રહા હૈ આપને, યે વાસ્તવ મેં અજ્ઞાનતા કા પ્રદર્શન હૈ. તો યે જૈસે હમને અભી બતાયા થા નિમિત્તાની વિપરીતાની શ્લોક મેં, તો ઇસમે પ્રભુપાદ બહુ સ્પષ્ટ રૂપ સે બતાતે હૈ યે સબ ચીજો કો લેકર કે, કે જબ તક કોઈ વ્યક્તિ કૃષ્ણ કી ઈચ્છા કો મહત્વ નહીં કરતા, આઈ વોન્ટ વાલા જો સિસ્ટમ હૈ ના, આઈ વોન્ટ, મુજે ચાહિયે, આધ્યાત્મિક ઈચ્છા નહીં, ભૌતિક ઈચ્છા, અપના સ્વાર્થ, આઈ વોન્ટ, કે આઈ વોન્ટ વાલી જો ઈચ્છા હૈ, મેરી ઈચ્છા યે, મેરી ઈચ્છા યે, વો સમસ્યા ક્રિએટ કરતી હૈ. ગુરુ કી ઈચ્છા, કૃષ્ણ કી ઈચ્છા કા હી મહત્વ હૈ. ગુરુમુખ પદ્મ વાક્ય ચિત્તે તે કહીએ કે આર ના કરી હમને આશા, ઓર કોઈ ઈચ્છા મત કરો, ઓર ઈચ્છા કિયા તો પરિણામ ભોગવના પડેગા, ફિર દુઃખી હોંગે. ઘણી વાર લગતે દેખતે કે કૃષ્ણ ભક્તિ માં સોચતે કે અમને ઇતના સબ સેવા કરને કે બાદ ભી મન સે ઇતના દુખી ક્યો રહેતે, યા શરીર સે ઇતના કષ્ટ ક્યો આતા હૈ, યે કારણ હૈ. ક્યા કારણ હૈ? ક્યોંકિ ગુરુ કી ઈચ્છા યા ભગવાન કી ઈચ્છા હમારી ઈચ્છા સે અલગ હૈ, યે સમસ્યા હૈ, ઓર ઇસલિયે હમ દુખી હો રહે. તો ઇસલિયે જબ હમારી ઈચ્છા સમાપ્ત હો જાયેગી યા ફિર કૃષ્ણ કી ઈચ્છા હમારી ઈચ્છા બન જાયેગી, નહીં કૃષ્ણ કી ઈચ્છા હમારી ઈચ્છા હોણી ચાહીએ, હમારી ઈચ્છા કૃષ્ણ કી ઈચ્છા બને તો થોડા સંસાર ખતમ હો જાય, સંસાર ખતમ હો જાય. કૃષ્ણ કી ઈચ્છા હમારી ઈચ્છા હોણી
ચાહીએ.
ગુરુ કે દેશ કે માધ્યમ સે જબ ગુરુ કહેતે યે કરો, શ્રીલ પ્રભુપાદ કહેતે તાત્પર્ય મેં કે યે કરના હૈ, તો વો કૃષ્ણ કા ઈચ્છા હૈ, ઉસકો એસા જરૂર નહીં કે કુછ લોગ એક હી દિન મેં સારી ઈચ્છા પૂરી કર સકતે ભગવાન કી, ગુરુ કી. ગુરુ ને કહા કે જ્ઞાન સે 16 માળા જપ કરો, નેક્સ્ટ ડે સે શરૂ હો જાતા હૈ. કુછ લોગ હોતે હૈ બહુ સ્ટ્રોંગ, લેકિન કુછ લોગ હોતે હૈ કી 10 સાલ બીત જાતા હૈ, અભી ભી 20 સાલ બીત જાતા હૈ, અભી ભી વો ઢંગ સે માળા નહીં હો પા રહી હૈ, 16 માળા ઢંગ સે નહીં હો પા રહી. અભી ગુરુ કા ઈચ્છા યે હૈ, હમારી ઈચ્છા કુછ ઓર હૈ. ગુરુ કા ઈચ્છા હૈ સેવા કરો, હમારી ઈચ્છા હૈ ઇતના મત નહીં, થોડા કરેંગે થોડા ઇધર ભી થોડા ઉધર ભી. તો ગુરુ કી ઈચ્છા ઓર ભગવાન હમારી ઈચ્છા આપસ મેં જબ સંઘર્ષ હોગા તો પરિણામ યે આયેગા કે હમ કષ્ટ અનુભવ કરેંગે, સમસ્યાઓ કા સુનામી આયેગા સામને, પરેશાન હોંગે, હાય હાય અબ ક્યા હોયેગા. તુરંત ગુરુ કે ચરણ મેં જાના પડતા હૈ, તુરંત વૈષ્ણવ કે પાસ જાના પડતા હૈ, બચાવ રક્ષા કરો. તો યહાં પર અર્જુન ને ભગવાન કઈ કઈ નામો સે બોલા ગયા હૈ અર્જુન, જૈસે અર્જુન ગોવિંદ નામ કા ઉપયોગ કિયે હૈ, જો ગાય ઓર ઇન્દ્રિયા કો સંતોષ દે આનંદ દેને વાલે હૈ, ફિર મધુસૂદન હૈ કે મધુ નામ કે અસુરો કો મારા થા, ફિર ભગવાન ને જનાર્દન શબ્દ કા ભગવાન કો જનાર્દન ભી કહા ગયા હૈ. જનાર્દન ઇસલિયે કહા ગયા હૈ, એક બાર કુછ આચાર્ય કહેતે હૈ હમારે, વો કહેતે હૈ કે જન શબ્દ કા અર્થ હોતા હૈ લોગ, ઓર અર્ધન શબ્દ કા અર્થ હોતા હૈ કિલર, દો અર્થ હૈ. જનાર્દન કા એક અર્થ હોતા હૈ લોગો કે પાલનહાર, ઓર દૂસરા અર્થ હોતા હૈ જીવો કે સંહારક, અર્ધન કરના. જનાર્દન દો અર્થ હોતા હૈ, એક તો પાલન કરને વાલે, સંહાર કરને વાલે. તો યહાં પર અર્જુન ને एक तरह से बताया कि सबकी सबका पालनहार करने वाले जनार्दन भगवान सब जीवों की हत्या करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? सबकी तो पालन करने का अपने ठेका है ना, आपका जनार्दन है। परमात्मा जो है उनका ऑफिशियल नेम जनार्दन है, तो जनार्दन भगवान ऐसा क्यों करेंगे? और दूसरा अर्थ अगर देखा जाए, दूसरा अर्थ अगर देखा जाए जनार्दन शब्द का, तो क्या है भाई, सभी जीवात्माओं को, सभी मनुष्य का, सभी लोगों का हत्या करने का जो काम है, तो तुम जनार्दन हो, मुझे क्यों लगा रहे हो इसमें, तुम ही कर देगा। तुम्हें लगता है कि इन सबका, इस सबको मारना है, तो तुम जनार्दन हो, तुम परमेश्वर हो, भगवान हो, मुझे क्यों लगा रहे हो, मार दो, एक सुदर्शन छोड़ दोगे, या तुम्हें तो कुछ भी इच्छा से मात्र, केवल इच्छा करने से मर जाएंगे ये लोग, तो इसमें मुझे क्यों लगा रहे हो, वो इसे पाप लगेगा आपको क्या पता, ऐसा तो मैं मारूंगा तो पाप लगा, तुम मारोगे तो कुछ नहीं लगेगा, ऐसा सोच रहा है। अगर देखा जाए तो केवल अर्जुन ये महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो केवल 37 years 37 साल ओनली ये युधिष्ठिर महाराज गादी पे थे युद्ध के बाद, 37 साल ओनली, फिर परीक्षित को दे दिया। आप सोचिए 37 साल तक, वो कोई सोचेगा 37 साल राज्य करने के लिए 64 करोड़ लोग को मारने का, इतना सब बड़ा नरसंहार, थोड़ा सा 35 साल राज्य करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि इन सबको मारना चाहिए। देखो तो सही, कौन कौन है, गुरु है, दादा है, पिता माँ है, चाचा है, भाई है, सब है, इन लोग को थोड़ी मारा जाता है, पागल है हम लोग क्या? तो अभी 36 में भी वही चीज को आगे बता रहे हैं। 36 पढ़िए। माधव, माधव का अर्थ होता है लक्ष्मी पति, लक्ष्मी के पति। अब तुम माधव हो, लक्ष्मी के पति हो, जो भाग्य की देवी लक्ष्मी बोले जाते हो, तुम मुझे दुर्भाग्य में क्यों डाल रहे हो? तुम तो भाग्य के विधाता हो, इसमें क्यों डाल रहे हो? बाबा बोलते हैं कि ये आतताय है, ये 6 प्रकार के आतताय है। प्रभुपाद बताते हैं 6 प्रकार के आतताय कौन से है, तात्पर्य बताते हैं। एक होता है जो कि जहर देता है, दूसरा होता है जो घर में आग लगाना हो, कहाँ लिखा है, यस, एग्रेसर्स, आतताई, ये रहा ये आतताई, आतताई जो धर्म के मार्ग से च्युत हुए, पतित हुए, ऐसे लोग, पतन जिसने प्राप्त हुआ है, आतताई। विष देने वाला, घर में आग लगाने वाला, किसी का घर जला देता है, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूट लेता है, भूमि को हड़प लेता है, या फिर किसी पराई स्त्री का हरण। अभी ऐसे आतताय को देखकर तुरंत मारने में पाप नहीं लगता, ऐसा अर्थशास्त्र कहता है, उनको मारने में पाप नहीं लगता। और अर्जुन कहता है आतताय है फिर भी हमारे स्वजन है, नहीं मारना चाहिए। अब ये स्वजन स्वजन कब का लगा रखा है उसने, ये स्वजन है, स्वजन है, स्वजन है। और स्वजन धर्मशास्त्र के आधार से अगर स्वजन में, अगर आतताय भी स्वजन है तो उसको नहीं मानना चाहिए। जैसे वो गुरुपुत्र अश्वत्थामा उसका उसको मारने का वचन नहीं था, उसको बोले मारना नहीं था, तो ऐसे जय द्रथ था उसने भी हरण किया था स्त्री का, द्रौपदी का हरण किया था, फिर भी उसको एक्चुअली वात था तो उसको खत्म करना चाहिए क्योंकि वो सज स्वजन था इसलिए उसको छोड़ दिया गया था। तो ऐसे धनुक शास्त्र में बताया, लेकिन यहाँ पर युद्ध के समय पे जो प्रभुपाद जो बताते हैं 6 प्रकार की आदत आई उनको मारने में पाप नहीं लगता, ऐसे कुछ धनुक शास्त्र बताते। और 6 के 6 प्रकार के जो पाप है यहाँ पर बताया है, 6 के 6 प्रकार के पाप कौरवों ने किए थे। आप लोग बता सकते हैं कैसे? तो छोड़ा था भीम तो खाने में पॉइजन दे दिया था, यस। फिर युद्ध करने तो आया अभी हथियार लेकर,
धन संपत्ति लूटा तो ये गैमलिंग के दौरान
दो बार, एक बार तो दूसरा स्थान वापिस दे दिया, दूसरी बार खेलो तो दूसरी बार अब जाओ ये तो द्रौपदी का अपमान किया, वस्त्र हरण। फिर पांचवा इंद्र वस्त्र चुरा लिया है ना, तो ये अभी कौन सा बाकी रहा? 6 के 6 तो खत्म कर दिए सब सभी तो हो गए। तो भगवान बोला अभी इसको तो मारने में कोई पाप नहीं है, खत्म करो इनको। लेकिन अर्जुन ऐसा सोच रहे थे कि ये स्वजन लोग हैं, इसलिए राजनैतिक कारण से उसने धर्म और सदाचार की दृष्टि से क्षमा करना उत्तम समझा। उसने सोचा कि नहीं 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 मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए ऐसा। अभी आगे अर्जुन कहते हैं, पढ़िए
37:38। ओ जनार्दन, although this man, their hearts overtaken by greed, see no fault in killing one's family or quarreling with friends, why should we, who can see the crime in destroying the family, engage in this acts of sin?
See, they are foolish. We are not foolish. Hey, तीसरा रीजन है अर्जुन का कि ये लोग अगर सब मर जाएंगे, क्षत्रिय का काम क्या होता है? समाज का सुरक्षा देना। अगर समझ लो कि आपके अहमदाबाद में एक दिन अगर पुलिस पूरी रथ यात्रा में चली जाती है तो सब जगह पुलिस स्टेशन खाली हो जाते है ना, तो सिक्योरिटी रिस्क तो हो जाती है, कहीं भी कुछ हो गया तो उनका पुलिस फोर्स होगा ही नहीं। यहाँ पर तो सारे पुलिस फोर्स इकट्ठे हो गए, सबको खत्म कर देंगे, इतने सारे सैनिक इतने सबको खत्म, तो सुरक्षा का क्या होगा? सोसाइटी पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। जो नए जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको गाइडलाइन कौन देगा कि बेटा ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं किया जाता है? कौन देगा? सब मर जाएंगे। तुझे यज्ञ कौन करेगा? क्षत्रिय यज्ञ नहीं करेंगे, यज्ञ कौन करेगा? तो पिंड क्रिया कौन करेगा? तो इतना बड़ा वंश खत्म हो जाता है तो इसका कितना बड़ा दुर्भाग्य होता है, और इसके जिम्मेदार हम बने? ये लोग तो बेकार है, इनका तो कोई दिमाग नहीं चलता है, आ गए युद्ध करने के लिए, हम थोड़ी पागल है, इतना बड़ा महान पाप करने के लिए हम जा रहे हैं? हाय हाय, क्या सोच रहे हैं? क्यों हम युद्ध में आए? निमित्ता विपरीत आए पड़ी आगे।
कुलनु नाश थे, सनातन कुल परंपरा नष्ट थी जाए, अने ए रीते बाकी नु कुटुंब अधर्म में सपराई जाए।
तो इससे क्या होता है? कुल नाश होता है, कुल का नाश होता है इसमें। with the destruction of Ganesh tree, the eternal family tradition is vanquished. Kulka parampara nasht. Rest of your family becomes, you know, adharma mein sab log phans jate hai. To kya hoga isse? स्त्रियां क्या सोचेगी हमारे कुल की, कि हमारे जो पुरुष लोग थे पति, हमारे जो कुल के जो पुरुष लोग थे, वो सब पुरुष लोगों ने अधर्म का आचरण किया था और इसलिए अधर्म का आचरण करने में कोई हानि नहीं है, क्योंकि हमारे बड़ों ने अधर्म का आचरण किया तो हम भी तो करेंगे अधर्म का आचरण। जनरली ऐसा देखा जाता है, आपसे अगर आगे बढ़े हुए कोई लोग है भक्ति में, या अगर उनके आचरण में कोई त्रुटि होती है, तो कुछ लोग मूर्ख लोग ये ग्रांटेड ले लेते हैं कि भाई हमारे आगे बढ़े हुए भक्त अगर ऐसा व्यवहार करते हैं, इसका अर्थ है कि ये उचित है, ये ठीक है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो व्यवहार जो करते वो ठीक है। शास्त्र गुरु साधु शास्त्र, ये तीन जो बताते वही सच है, और तीनों में एक ही चीज बताई होती है, अलग अलग नहीं बताया होता है। तो इसलिए स्त्रियां अपवित्र हो जाएगी। आगे पढ़िए 40।
हे कृष्ण, जरा कुलना धर्म व्यापे त्यार कुलनी स्त्रीय भ्रष्ट थाय छे, अने कुलनी स्त्रीय भ्रष्ट थवाथी हे विष्णु
वंशना कृष्ण वर्ण संकर प्रधान। हाँ देखो, तुम अपना, अगर तुम ऋषि वंश को अगर ऐसा करने दोगे और तुम मेरे कुरु वंश के पीछे पड़े हो। ये ऋषि वंश को अगर ऐसा नाश होगा तो तुम्हारे ऋषि वंश में ऐसा यही वार्ष्णेय भगवान को बोला है। सीधा वंश की बात चल रही है तो सीधा वंश को वार्ष्णेय बता दिया भगवान को, क्योंकि स्त्रियां अपवित्र हो जाएगी। आप सोचो, स्त्रियों को गाइड करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो वो स्त्री स्वातंत्र के नाम से मिथ्याचार या व्यभिचार में व्यक्त हो जाए। आज के समय में देखा जाता है अमेरिका में, तो विदेशों में तो बहुत तेज है, यहाँ पर अब धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। स्त्री का फ्रीडम, स्त्री का स्वतंत्र, नारी का स्वतंत्र, ये एक्चुअली उन कुछ गिने चुने भोगवादी लोगों का विचार है, जो अमेरिका जैसे कई प्रसिद्ध देश से, उन लोगों ने इस विचार को मूर्ख स्त्रियों के दिमाग में डाला कि भाई तुम किसी के प्रोटेक्शन में क्यों रहती हो, ये पिता पति और ये पुत्र, ये तो वैदिक की ऑर्थोडॉक्स, वैदिक सिस्टम ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है, प्राचीन रिलीजियस सिस्टम है। आजकल की नारी तो कदम से कदम मिलाती है। आजकल की नारी जो होती है वो स्वतंत्र है, वो अपना डिसीजन खुद लेती है। अब जब से ये, और इसका एक्चुअली मेन उद्देश्य था उनका भोग करना। जब वो मूर्ख होते हैं, उनका संरक्षण कोई नहीं करेगा, उनको मूर्ख बनाया जाता है। प्रभुपाद विश्वास, प्रभुपाद ने एक बहुत बड़ा एक किताब है अपने पास उसके ऊपर, एक आर्टिकल है उसका पूरा, प्रभुपाद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वार्तालाप हुआ था तो उसे पूरा न्यूज पेपर में सब जगह आ गया था कि प्रभुपाद इज अगेंस्ट, यू नो, नारी के स्वतंत्र के अगेंस्ट में है। और प्रभुपाद ने कहा यस, मैं नारी के स्वतंत्र से अगेंस्ट में हूँ। क्यों? क्योंकि ये नारी का रक्षण नहीं, ये नारी का एक्सप्लोइटेशन है, शोषण है, ये शोषण हो रहा है और आज संसार में यही देखा जा रहा है। और ये संस्कृति हमारी आज भारत से टूट रही है, हमारी निकल रही है, और परिणाम ये आ रहा है कि क्राइम जो जो गुना है वो बढ़ रहा है, लोग अतृप्त हो रहे हैं, लोग वर्ण शंकर बन रहे हैं, उनसे जो प्रजा उत्पन्न होती है वो अधार्मिक होती है, वो उनका विचार, उनका वो क्षुद्र जैसे होते हैं, उनकी मनोस्थिति वो सब विनाशक होती है। गुजराती में ऐसा कहावत भी है कि क्यों जो है वर्ण शंकर जो है, बोलते हैं ऐसा, वर्णशंकर प्रजा शब्द का अर्थ होता है कि जो जिसका वर्ण फिक्स नहीं है, इसको वर्णशंकर कहते हैं। जिसका मरण फिक्स नहीं है, जिसका मरण फिक्स नहीं, इसका अर्थ है कि वो ब्राह्मण के उसका ये स्त्री जो है उसके उसका जो पुत्र है वो कौन से पुरुष से हुआ है, वो ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था, कोई वर्ण पता ही नहीं है, ये सब के सिचुएशन आ जाती है। यही व्यभिचार, और ये तो एक्सपर्ट लोग क्या करते हैं व्यभिचार आगे बढ़ाने के लिए, मतलब बच्चा जन्म ले उससे पहले मार दो। और अमेरिका में क्या देखा जाता है, मैं कुछ सर्वे पढ़ रहा था जब मैं कहीं 20 साल पहले सर्वे जब सुना मैं तो चौंक गया था, बारे बार बच्चा जन्म, अगर कोई बच्चा जन्म ले ले तो भाग्यशाली, ऐसी सिचुएशन हो गया बच्चे को मार दिया जाता है, वो अगर समझ लो 10 बच्चे का जन्म होने वाला होता है उसमें से केवल 2 बच्चे या 4 बच्चे ही जन्म लेते हैं, बाकी सबको मार दिया जाता है गर्भ के अंदर ही। और ये भी हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है। इसका रीजन क्या है? पाप। इनका रीजन क्या है? स्त्रियों का चरित्र गया। इनका रीजन क्या है? स्त्रियों को असुरक्षा है, स्त्रियों की सुरक्षा कोई करने वाला है नहीं, और ये करने स्त्रियों की सुरक्षा नहीं होती, ब्राह्मणों की सुरक्षा नहीं होती, गायों की सुरक्षा नहीं होती, वृद्धों की सुरक्षा नहीं होती, और बच्चों की सुरक्षा नहीं होती। जब ये 5 लोगों की सुरक्षा नहीं होती वो राज्य कभी सुखी नहीं हो सकता, वहां पर कभी भी किसी भी प्रकार का समृद्धि नहीं हो सकती। और यही 5 जो जिसको आज के समय में टारगेट किया जा रहा है, तो इसलिए स्त्रियों को सुरक्षा प्राप्त होना बहुत ही आवश्यक है। चाणक्य पंडित कहते हैं विश्वासम नैव कर्तव्यम स्त्रीषु राजकुलेषु च। राजा पर और स्त्री पर कभी भी विश्वास नहीं किया जाता, ऐसे चाणक्य पंडित कहते हैं, क्योंकि राजा पर क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि राजा किसी भी समय पर अपना पक्ष बदल देते हैं, है ना। वो तो आप सब ने देख लिया अभी कुछ समय में कर्नाटक इलेक्शन में, फिर आपने ये गुजरात इलेक्शन में, या यू नो कभी किसी भी समय पर अपना पक्ष बदल देते हैं, कभी भी अच्छा आदमी को भी मरवा देते हैं। तो राजा चाणक्य पंडित कहते हैं कि राजा पर कभी भी विश्वास नहीं किया जाता, और वही उसी तरह से स्त्री पर कभी विश्वास नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि स्त्री का माइंड और बच्चे का माइंड सेम है, स्त्री का माइंड और बच्चे का माइंड बिल्कुल सेम होता है। जैसे बच्चे को रक्षण की आवश्यकता होती है वैसे स्त्री को भी रक्षण की आवश्यकता होती है। इसमें कोई स्त्री का अपमान नहीं कर रहे, शास्त्र स्त्री का मान कम नहीं कर रहे, उल्टा कह रहे हैं कि स्त्री को ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है, स्त्री को ज्यादा केयर, ज्यादा अटेंशन, ज्यादा उनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस तरह से शास्त्र इसको बता रहे। सो वी स्टॉप हियर। एक्चुअली मेरा इच्छा था कि आज मैं 46 तक कर लूं, चैप्टर को फिनिश कर लूं, बट वी आर ऑलरेडी यू नो 4 मिनट डिलेड, 4 मिनट आगे हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो 6 श्लोक नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, ठीक है। सो वी स्टॉप हियर।